20 अक्टूबर रविवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से गोलीबारी, एक दूसरे पर लगाया संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप।
भारत और पाकिस्तान आपस में ये मामला गुफ्तगू के जरिए हल कर लें तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और इंडिया वालों के लिए भी अच्छा होगा। हम लोग भी अमन से रहे और वो खुद भी अमन से रहे।
हरियाणा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, कल होगा मतदान। 17 अन्य राज्यों में भी विधानसभा की 51 सीटों पर होगा उपचुनाव। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद क्या सोच रहे हैं पक्षकार?
देश के अंदर सद्भाव सौहार्द बना रहे, चिढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए। हार और जीत में जो जीतता है वो उन्मादी भी हो जाता है, उन्माद अच्छी जीत।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में दोनों ओर कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि भारत की ओर से दागे गए मोर्टार से 6 नागरिकों और एक सैनिक की मौत हुई है, जबकि भारत का कहना है कि उसके 2 सैनिकों और एक आम नागरिक की जान गई है। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर मौजूद चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
वो चाहते हैं कि सरहद पार से कुछ और आतंकवादी अंदर भेजे जाएं जो कि माहौल को बिगाड़ सके। तो हमें ये पक्की खबर थी कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड एरिया के कैंप्स हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है, खासकर किरण, तंधार और हमारे जो नौगाम सेक्टर है, इसको हम रीपा वैली बोलते हैं। तो हमने इनको टारगेट किया अपने आर्टिलरी के जरिए, और जिस तरह की खबर हमें मिली है उसमें पाकिस्तानी सेना को और उनके वहाँ जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे उनको भारी नुकसान हुआ है।
थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के शब्द। हांगकांग में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। पुलिस की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। एक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ पर अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। दुकानों, बैंकों और मेट्रो स्टेशनों पर तोड़फोड़ भी हुई है। मास्क पहनने पर लगे प्रतिबंध को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। हांगकांग में पिछले 4 महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें कई मौकों पर लोग हिंसक भी हुए हैं। इस संकट को सुलझाने की दिशा में बहुत कम प्रयास होते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन ने भले ही यूरोपीय संघ को पत्र भेजकर ब्रेक्सिट टालने की अपील की है, मगर सरकार 31 अक्टूबर तक यूरोपीय संघ छोड़ने पर बनी हुई है। यूरोपीय संघ के साथ डील न होने की स्थिति में बनने वाली योजनाओं का जिम्मा संभालने वाले लैंकेस्टर के चांसलर माइकल गोव ने स्काई न्यूज से बातचीत में कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के तय समय पर यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के वायदे पर कायम है।
We are going to leave by October the 31st. We have the means and the ability to do so. You know, yesterday we had some people who voted for delay.
हम 31 अक्टूबर तक यूरोपीय संघ छोड़ने वाले हैं। हमारे पास ऐसा करने के साधन भी हैं और योग्यता भी। कल कुछ लोगों ने इसे टालने के पक्ष में वोट किया ताकि इस प्रक्रिया को लटकाया जा सके। मुझे लगता है कि देश का मूड साफ है और प्रधानमंत्री का निश्चय भी पक्का है। मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। हमें 31 अक्टूबर तक बाहर निकलना ही होगा। ये थे लैंकेस्टर के चांसलर माइकल गोव के शब्द। तुर्की ने कहा है कि सीरिया के सरहदी इलाकों में कुर्द लड़ाकों के हमले में उसके एक सैनिक की मौत हुई है जबकि एक अन्य जख्मी हुआ है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद तुर्की पिछले हफ्ते युद्ध विराम पर सहमत हुआ था। इस समझौते के तहत मंगलवार तक कुर्द लड़ाकों को तुर्की की सीमा से पीछे हटना है, मगर दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। तुर्की ने इस इलाके से अमरीकी सैनिकों के हटने के बाद कुर्दों पर हमले करने शुरू किए हैं जिन्हें वो चरमपंथी मानता है। इस बीच अमरीका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का कहना है कि सीरिया में बचे हुए अमरीकी सैनिकों को इराक भेजा जाएगा ताकि वो इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के खिलाफ अभियान चला सकें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कड़ी सुरक्षा के बीच हुए समारोह में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है। समारोह से पहले किसी तरह की अप्रिय स्थिति टालने के लिए 30,000 सैनिक और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जोकोवी नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रपति अप्रैल महीने में दूसरी बार चुने गए थे। जब वो पहली बार सत्ता में आए थे तो उनसे काफी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन उन्हें कड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी संदीप सोनी के साथ। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से गोलीबारी हुई है और दोनों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारतीय सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के सीमा पार आम लोगों पर गोलीबारी की है। इसमें कम से कम एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 3 अन्य जख्मी हुए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और इस बहाने भारतीय इलाके में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत पर बेवजह युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने जूरा, शाहकोट और नौशेरा सेक्टर में आम लोगों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जिसमें भारतीय सेना के 9 जवान मारे गए और कई जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के एक जवान के साथ 3 आम लोग भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के इस दावे से इतर और जानकारी के लिए मैंने पाक प्रशासित कश्मीर में पत्रकार औरंगजेब जर्राल से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया।
देखिये, कल सनेचर के रोज जो है ना सैटरडे को कोई 8 बजे के लगभग रात की करीब इंडियन साइड से, यानी ये जो हमारी तरफ से चिलियाना सेक्टर कहते हैं, इस साइड से जो है वो शदीद शेलिंग की जो है वो आवाजें पहले सुनाई दी गई। यहाँ मकामी लोगों से मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ लोग हैं, उनका ये कहना था कि शदीद जो है वो गोलाबारी स्टार्ट हुई 8 बजे के करीब। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता रहा, कमी नहीं आई है। जो नुसेरी है ये बेसिकली नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका यहाँ डैम है और उसके करीब बड़ी आबादी है। सीज फायर जब हुआ है उसके बाद तकरीबन अगस्त में कोई 28 या 29 अगस्त या 30 अगस्त के लगभग यहाँ फायर हुआ था, उसके बाद आज ये फायर यहाँ आया है। उनका ये कहना था कि हम लोग जो है वो उस टनल में, महफूज टनल में जो है जाते हैं, और लोग जो है उस टनल में जो है उन्होंने मूव किया उस साइड के ऊपर क्योंकि गोलाबारी शदीद होती जा रही थी। तो वहाँ पर एक फैमिली है जिसकी 3 डेथ हुई और 3 लोग जख्मी हुए हैं। उनके एक जो शख्स वहाँ हाजी आजम है, उनके बेटे से मेरी बात हुई है, उनके भाई और उनके वालिद साहब जो है उनकी डेथ हुई है।
जी, मेरा नाम शुजा आजम है और हम रात को 11 बजे फायरिंग शुरू हुई, घर से निकल के नीलम झेलम प्रोजेक्ट के जा रहे थे, सुरंग में जा रहे थे, तो रास्ते में इस तरह गोला लगा और इस वजह से ये दोनों मुल्कों पाकिस्तान और इंडिया का मसला है आपस में, ये हमें हम कश्मीरियों के साथ ऐसा किया उनके सलूका रही।
और वो कहते हैं कि उसके बाद ये गोलाबारी शदीद हो गई है और बड़ी मुश्किल से हमने रेस्क्यू किया और टनल में पहुंचे हैं और सारी रात हम डेड बॉडीज देके टनल में रहे और ये लगभग जो है वो ये कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे तक यानी वक्फे से गोलाबारी जो है वो जारी रही है। इधर पाकिस्तानी साइड से भी उसकी यानी जवाबी कार्रवाई वो कहते हैं की है। उसके बाद जो मुकामी लोग हैं, यहाँ नुसेरी के आगे एक पंचकोट का इलाका आता है, पंचकोट के लोगों से हमारी बात हुई है, पंचकोट में भी जो है वो इंडियन शेलिंग की वहाँ गोले जो हैं वो पहुंचे हैं।
जी, मेरा नाम इकरार है और मैं फर्स्ट ईयर की तालिबा हूँ। तो जब रात को गोले लगे तो हम लोग सोए हुए थे, तो तकरीबन 11:20 का टाइम था, तो हम लोग सारे भागे इधर उधर, फिर जाके नीचे वो उधर एक चाइना प्रोजेक्ट में जो सुरंग बनी है उसमें जाके छुपे, रात सारी वहीं गुजारी और फिर सुबह हुई जब तो वापस अपने घर आए। भारत और पाकिस्तान आपस में ये मामला गुफ्तगू के जरिए हल कर लें तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और इंडिया वालों के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि दोनों मुल्क में बदामनी पैदा हो रही है और लोग तरह तरह की मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग भी अमन से रहें और वो खुद भी अमन से रहें।
और उसके अलावा जूरा जो यानी बिल्कुल टंगार के सामने जो आता है, क्रॉसिंग पॉइंट है, चिराना क्रॉसिंग पॉइंट है, वहाँ पर जो है वो गोले जो लगे। जूरा में एक पाकिस्तान के एक इलाके से एक वहाँ एक बंदा जो है वो शॉप करता था, दुकानदार था, उसकी डेथ हुई है। और जबकि 2 लोग जो हैं वो पंचकोट में एक सड़क पे काम कर रहे थे, मजदूर थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनका तलक था, उनकी डेथ हुई है। इन मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन जो है वो 8 लोगों की जख्मी होने की भी इत्तला है। आज हम जो है वो यहाँ से जो नुसेरी से ऊपर जो एक जगह है जहाँ ये लोग रहने वाले थे, 3 लोग जिनकी एक ही फैमिली की डेथ हुई है, वहाँ गए हैं, वहाँ उनके यानी डेड बॉडीज लेके गए हैं, लोग वहाँ पे जनाजा भी किया गया है और लोगों से हमारी बातचीत हुई है। लोगों में एक गैर महफूज होने की उनके अंदर बड़ी एहसास था और दूसरा उनके साथ उनके जज्बात बड़े इंडिया के खिलाफ बड़े जज्बात दिखा रहे थे कि देखें दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान जंग है और इसमें आम लोग जो हैं वो पिस रहे हैं।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से जानकारी दे रहे थे पत्रकार औरंगजेब जर्राल। दूसरी ओर भारत प्रशासित कश्मीर में हुए घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखी बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने कुछ देर पहले रियाज मसरूर से बात की।
जी, कुपवाड़ा जिले से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरती है, बारामूला से भी गुजरती है, लेकिन कुपवाड़ा के दो बॉर्डर सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं, जिनमें टीटवाल और टंगड़ार आते हैं। और टंगड़ार ब्लॉक में ये घटना घटी है। कल शाम 7:30 बजे से ये शुरू हुआ है वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार, और आज सुबह 5 बजे तक लगातार ये फायरिंग होती रही। और पुलिस का कहना है और वहां स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बड़े हथियारों से गोले फेंके गए जो टीटवाल के चिरकूट, मंशारेला और गुंडीशाट इलाकों में गिरे, और वहां पर बड़ी संख्या में जो है पशु भी मारे गए हैं, क्योंकि गांव खानों पे ये शेल गिरे हैं। और एक नागरिक मोहम्मद सिद्दीक, उनकी उम्र 55 वर्ष है, उनकी बेटी की शादी जो है कल होनी थी, वो अपने घर से एक गैस सिलेंडर निकाल रहे थे कि शेल उनके ऊपर गिरा और उनका मकान भी उसी में आग लग गई उसमें। और कुल मिलाकर इन सारे इलाकों में जो हैं 7 मकान जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं और 3 नागरिक जो हैं वो घायल हैं। और भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान की शेलिंग में 3 जो सैनिक हैं जो 39 ग्रेनेडियर के हैं वो मारे गए और 3 घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन अब पूरे इस करना तहसील में जो कुपवाड़ा जिले में आती है उसमें वो पूरा तनावग्रस्त है और भयभीत है पूरी जो आबादी वहां की है। और कई लोगों ने पलायन भी किया है, लेकिन उनके पास साधन थे, अपनी गाड़ियां थी, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो वहीं पे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से जम्मू के सांबा या हीरानगर सेक्टरों में लोगों को बंकर बना दिए हैं प्रशासन ने, इस तरह से यहाँ बंकर नहीं है। जब भी गोलाबारी होती है तो वो या तो पहाड़ों में छुपना उन्हें पड़ता है या घरों के नीचे उन्होंने खुद खंदकें खोद दी हैं। लेकिन इसमें काफी ज्यादा जो है पहली बार ये इस तरह की शेलिंग हुई है कई वर्षों बाद, जिसमें इतनी बड़े पैमाने पे वहां पे जो है बहुत ही भयभीत है पूरी आबादी।
रियाज मसरूर, आपको कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जो गांव हैं भारत की तरफ, उनका दौरा किया है आपने। हमारे सुनने वालों को जरा वहां का मंजर बता पाएंगे कि किस तरह का माहौल है, लोग कैसे घरों में रहते हैं, क्या वहां खेती किसानी होती है, जानवर पाले जाते हैं? क्योंकि उस सरहद के दूसरी तरफ का इलाका जो है वो नीलम वैली कहा जाता है।
जी हाँ, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा, इसकी कुल लंबाई 740 किलोमीटर है और ये कोई मैप पे खींची गई लकीर नहीं है। एक 740 किलोमीटर लंबी और 34 किलोमीटर चौड़ी जो है ये सीमा है। इसका मतलब है ये सिर्फ सीमा नहीं बल्कि सीमा में लाखों लोग रहते हैं और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद भी कहा गया है कई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स में। आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है रहन सहन होता है। अब मैं आपको बताऊं, जहां ये दुर्घटना घटी है वो टीटवाल और टंगड़ार सेक्टरों पर आधारित है। दोनों टीटवाल और टंगड़ार सेक्टरों के बाद जो दरिया आता है उसे जो है नीलम कहते हैं, ये हालांकि वो जहलम का ही हिस्सा है, इसीलिए उस पार के क्षेत्र को नीलम वैली ये लोग कहते हैं। टीटवाल में तो एक जगह ऐसी भी है जहां इसी नदी पे रस्सी बंधी हुई है, जिसमें जो लोग 1947 में जैसे आधे उधर रह गए थे या आधे इधर आ गए थे, तो वो लोग एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने के लिए चिट्ठियां एक दूसरे को लिखते हैं और उस रस्सी में बांध के जो है एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं। और इन सभी इलाकों में जो घर हैं वो पुख्ता ईंटों या पत्थरों के नहीं है बल्कि लकड़ी के घर हैं और उन पर घास की छत होती है। वहां एक नागरिक है मोहम्मद सईद, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ और उनका कहना है कि यही कारण है कि इस शेलिंग में काफी ज्यादा मकान भी जल गए, क्योंकि वो सब लकड़ी के मकान है जिन पर घास की छत है, अगर ये गोली भी चलेगी तो आग लग सकती है। तो इस बार तो काफी ज्यादा शेलिंग हुई और बड़े हथियारों से हुई है, इसीलिए बहुत भारी जो है वो नुकसान हुआ है। और ये सबसे दूर जो है श्रीनगर से इलाका है टंगड़ार सेक्टर, और सर्दियों में तो जाड़े में 6 महीने के लिए वहां का रास्ता ही बंद हो जाता है, इसीलिए उन लोगों का कहना है कि उन्हें जो है बंकर बना दिए जाएं। वहां पे 80,000 की जो है वो जनसंख्या है पूरी करना तहसील की, जिसमें ये दोनों सेक्टर्स आते हैं, और उसमें से 30-40 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो लाइन के पास रहते हैं, यानी कंट्रोल लाइन के बिल्कुल निकट वो होते हैं और वो हमेशा इन द लाइन ऑफ फायर रहते हैं। जब भी दोनों सेनाओं के बीच तनाव होता है या गोलीबारी होती है तो सबसे पहला निशाना इन गांव में रहने वाले नागरिक होते हैं।
जानकारी दे रहे थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत के दो राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दोनों ही राज्यों में कल मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन्हें विपक्षी दल चुनौती दे रहे हैं। कल महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 11, गुजरात की 6, केरल बिहार की 5-5, सिक्किम की 3, पंजाब असम की 4-4 सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की 2-2 सीटों पर और ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुदुचेरी तथा अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सभी जगह मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश में जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से ज़्यादातर सीटें बीजेपी विधायकों के लोकसभा में पहुँचने की वजह से खाली हुई। ज़्यादा जानकारी लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट में।
साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बड़ा बहुमत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में भी मिली बड़ी जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उपचुनाव में बेहद बिखरा हुआ और कमज़ोर विपक्ष चुनौती दे रहा है। विधानसभा में बीजेपी के पास इतना बड़ा बहुमत है कि वो सारी सीटें हार जाए फिर भी सरकार की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ रही है बल्कि टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक की गतिविधियों पर बेहद सावधानीपूर्वक कदम रखे रही। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां उपचुनाव में उतरी जरूर हैं लेकिन लगता है बहुत अनमने तरीके से। वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा बताती हैं,
बीजेपी ये जान रही है कि अच्छी स्थिति उसको फायदा देखिए अब मिल रहा है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। अभी हमीरपुर में जो बाय इलेक्शन हुआ है उसमें इनका विक्ट्री मार्जिन आप देखिए 1.5-2.5 साल में कितना गिर गया है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ हो रही है रामपुर में क्योंकि वहाँ आजम खान अपनी जी जान से लगे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि प्रतापगढ़ सीट उसने अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी है। जिन 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है उनमें 2 सीटों को छोड़कर बाकी सारी सीटें उसके विधायकों के इस्तीफों की वजह से खाली हुई हैं। योगी सरकार के 3 मंत्री भी सांसद बने हैं और उनकी सीटें भी खाली हुई हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अकबरपुर जिले की जलालपुर सीट बीएसपी और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी लेकिन बीजेपी उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर भी पूरा जोर लगा रही है। सोमवार को लखनऊ की कैंट, बाराबंकी की जैतपुर, चित्रकूट की मानिकपुर, सहारनपुर की गंगोह, अलीगढ़ की इगलास, रामपुर, कानपुर की गोविंद नगर, बहराइच की बलहा, प्रतापगढ़, मऊ जिले की घोसी और अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की घोषणा के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और संगठन महामंत्री सुनील बंसल चुनाव वाले क्षेत्रों का कई बार दौरा कर चुके थे और उसके बाद भी वो इन सभी क्षेत्रों में प्रचार के लिए गए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा न तो बीएसपी नेता मायावती प्रचार के लिए उतरी और न ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार करने आया। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस की दिग्गज नेता राजकुमारी रत्ना सिंह बीजेपी में शामिल हो गईं। जानकारों का कहना है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद जरूर साबित होंगे लेकिन आगे के चुनाव के लिए कोई बड़ा संदेश देंगे ऐसा भी नहीं है। अमिता वर्मा कहती हैं,
मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि एवरीबॉडी नोज ऑलरेडी कि बीजेपी का एज है तो कोई मैसेज तो है नहीं। अच्छा विपक्ष का भी है, विपक्ष शायद ये सोच रहा है कि हमारे जीतने से भी इस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो जो भी अपना कंसंट्रेट करेगा वो 2022 पे करेगा।
जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो उसे जलालपुर और रामपुर सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीद है। जलालपुर सीट बीजेपी ने 1996 के बाद कभी नहीं जीती है तो रामपुर सीट पर आजम खान या उनके परिवार के ही सदस्य 1980 से जीतते आए हैं। साल 1996 में उन्हें कांग्रेस के अफरोज खान ने हराया था। आजम खान ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.5 महीने लगातार चली सुनवाई बीते बुधवार को खत्म हुई। माहौल गर्म है। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे का फैसला अगले महीने आने वाला है। इस मुकदमे में 3 मुख्य पक्ष हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इन तीनों पार्टियों की दलीलों का फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के हाथों में है। सभी पक्ष अलग अलग संभावित नतीजों पर गौर कर रहे हैं। BBC संवाददाता जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट।
अयोध्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद देश की निगाहें इस शहर पर टिकी हैं। सालों तक इंतजार के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। फैसला मध्य नवंबर तक आने की संभावना है। राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इस मामले में तीन मुख्य पार्टियां हैं, दो हिंदू पक्ष और एक मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष में से एक यानी निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1961 में और रामलला विराजमान ने 1989 में अदालत का रुख किया था। तीनों मुख्य पक्ष 3.25 एकड़ जमीन की मिल्कियत का दावा करते हैं। इन तीनों पक्षों से बात करने के बाद समझ में आता है कि चार तरह के फैसले की संभावना बन सकती है। पहला, ऊंची अदालत 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख सकती है। इसका मतलब ये होगा कि हिंदू पक्ष राम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मंदिर कौन बनाएगा। हिंदू पार्टियों में इस बात पर सहमति तो है कि मंदिर बनाना है, लेकिन कौन बनाएगा इस पर सहमति नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय के अनुसार मंदिर राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा। वीएचपी न्यास के साथ है।
राम जन्मभूमि न्यास ने अपने को इसके लिए प्रस्तुत किया है 1989 में। राम जन्मभूमि न्यास ने इसके लिए देश की 6 करोड़ जनता से धन संग्रह किया है और उस धन के आधार पर हमने संपूर्ण मंदिर का एक ड्राइंग के अनुसार फिर वो काहे से बनेगा और उसको संतों की एक बड़ी बैठक के द्वारा स्वीकार कराया है, उसके अनुसार उसकी तैयारी की है, स्टोन परचेजिंग की है, स्टोन कार्विंग की है और लगभग 60% स्टोन कार्विंग करके अयोध्या की वर्कशॉप में राम घाट पर वो रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बनाएंगे, मैं तो समझता हूँ अन्य किसी को इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं।
लेकिन निर्मोही अखाड़े के कार्तिक चोपड़ा कहते हैं मंदिर वो बनाएंगे।
निर्मोही अखाड़ा ही मंदिर बनाएगा, बाकी सारे संतों को साथ लेके, बाकी सारे अखाड़ों को और बाकी हिंदुओं को लेके, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा ही भगवान श्री राम के श्री लला जी के शबियत हैं। शबियत का मतलब है कि भगवान के लिए इस दुनिया में उसकी सेवा करना, उसके लिए सारे काम करना, उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, उसके लिए सूट लड़ना, केस लड़ना, उसके लिए इस दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से जो काम करने हैं शबियत करता है।
मंदिर की देखरेख कौन करेगा इस पर भी सहमति नहीं है। चंपत राय कहते हैं कि पहले मंदिर तो बने, लेकिन निर्मोही अखाड़ा के 94 वर्षीय राजा रामचंद्र आचार्य कहते हैं मंदिर का मैनेजमेंट उनके हाथ में होना चाहिए।
मैं कह रहा हूँ कि जब जिनके पक्ष में जो मंदिर बनाता है वो मंदिर मालिक कहलाता है। अच्छा, सहयोग की तो कामना हमारे पास में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर परंपरा मानी जाइए, हम लोग को हर घर से हमारे यहाँ साधु संत बनते हैं।
राम की मूर्ति पर भी आपसी मतभेद है। निर्मोही अखाड़े के मुताबिक धनुष वाले राम की प्रतिमा लगानी पड़ेगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अनुसार मूर्ति रामलला की होगी, जैसा कि चंपत राय कहते हैं।
मुकदमा रामलला का, पूजा रामलला की 1949 से जिस प्रतिमा की पूजा हो रही है मुख्य प्रतिमा वही, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। जो ड्राइंग तैयार की गई है उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ दरबार रहेगा, लेकिन जो मेन टेंपल है रामलला।
लेकिन अगर फैसला मुस्लिम पक्ष में गया यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्ष में गया तो क्या होगा? रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं,
देखिए इसके संबंध में हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पहले आप कोर्ट पर विश्वास करिए और कोर्ट के आदेश के बाद तब हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आता तब तक हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। अब अध्यादेश लाएंगे कि कैसे करेंगे वो उन्होंने कह दिया, आदेश सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद ही होगा।
हाल में कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने एक बयान में कहा था कि अगर अदालत का फैसला मुस्लिम पक्ष में जाता है तब भी उन्हें इस स्थान को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। क्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इकबाल अंसारी इस सुझाव से सहमत हैं? वो सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देते।
अपनी अपनी बात कहें जो लोग कहते रहते हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम लोग चाहते हैं कि जो कुछ भी करना है कोर्ट करे, हम उसको मानेंगे।
लेकिन अगर फैसला रामलला के हक में जाता है तो? इस पर वीएचपी के चंपत राय कहते हैं,
इसे हार और जीत के रूप में मत देखिए, देश के अंदर सद्भाव सौहार्द बना रहे, चिढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए। हार और जीत में जो जीतता है वो उन्मादी भी हो जाता है, उन्माद अच्छी चीज नहीं है, उन्माद यानी पागलपन।
दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत का फैसला उसे कबूल होगा चाहे वो उसके खिलाफ ही क्यों ना हो,
इकबाल अंसारी कहते हैं,
देखिए ऐसा नहीं कि अब चुनौती देने का सवाल ही नहीं है, अब जो भी कोर्ट फैसला करेगा हम लोग तो बार बार कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे।
और अगर फैसला निर्मोही अखाड़े के पक्ष में गया तो क्या होगा? वीएचपी के अनुसार अगर ये होना था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही इसके हक में फैसला सुना देता। चंपत राय कहते हैं,
अगर हमने पॉलिटिसाइज कर ही दिया तो 89 के पहले 1950 से 1989 तक 39 साल में उन्होंने क्या किया, क्या पाया, वो भी तो कुछ बताएं कि 30 साल में उनकी क्या प्रगति है। लेकिन कोई बात नहीं, आपस में आरोप प्रत्यारोप का कोई अर्थ नहीं है। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे कि आपका मुकदमा 1959 में जिन वकीलों ने ड्राफ्ट किया उसमें कानूनी कमियां रह गई जो आपने कभी भी दूर नहीं की।
निर्मोही अखाड़े को पूरी उम्मीद है कि फैसला उनके ही हक में जाएगा, जैसा कि इस प्राचीन संस्था से जुड़े राज राम चंद्र आचार्य कहते हैं।
अभी देखिए, हम तो आशा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक मंदिर बनाने का जहाँ तक प्रश्न है वो बाहर का भाग राम निर्मोही अखाड़े के पास में ही है, हाई कोर्ट ने भी ये माना है, अंदर के भाग के लिए जब हमारा दावा था तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि 59 टाइम बाहर का है, यद्यपि टाइम बाहर का नहीं है, 61 वक्फ बोर्ड का भी जो दावा है उसको टाइम बाहर का कहा, तो 89 रामलला को कैसे अंदर का मान लिया इन्होंने, इसलिए वो विवादित मान करके स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय करना है जहाँ मंदिर बनना है वो ज़मीन तो निर्मोही अखाड़े की है।
लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के हाथ में है, सभी पक्षों और देश भर को उनके फैसले का इंतजार है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार। समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच।
जी हाँ, रांची में जो खेला जा रहा है आज उसका दूसरा दिन, और दूसरे दिन भारत की पकड़ काफ़ी मजबूत, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी जब शुरू हुई तो आज के दिन का खेल समाप्त होते होते उसके 2 विकेट केवल 9 रन पर गिर चुके थे। डीन एल्गर और क्विंटन डिकॉक कुछ खास नहीं कर सके। डीन एल्गर बिना खाता खोले मोहम्मद शमी की गेंद पर विकेट कीपर साहा के हाथों लपके गए, जबकि क्विंटन डिकॉक 4 रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर विकेट कीपर साहा के हाथों लपके गए, जबकि इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 497 रन बनाकर घोषित की। यानी दक्षिण अफ्रीका अभी भी भारत से 488 रन पीछे, 8 विकेट बाकी हैं। बड़ा लंबा रास्ता तय करना, पहले तो डर ये कि फॉलहॉर्न बचेगा या नहीं, और इसका पूरा श्रेय जाता है रोहित शर्मा को जिन्होंने 212 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 115 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी 51 रन निकले। अपनी पारी और अजिंक्य रहाणे के साथ साझेदारी को लेकर रोहित शर्मा कहा,
अच्छा अपॉर्चुनिटी था ऊपर बैटिंग करने का, तो फुल यूज़ करना था, नहीं तो फिर काफ़ी कुछ होने वाला था। मुझे पता था आप लोग काफ़ी कुछ लिख लेते थे मेरे बारे में, तो इसीलिए शायद अभी अच्छे चीज़ लिखोगे। अजिंक्य ने उस समय जो पार्टनरशिप मेरे साथ की, हम दोनों का जो पार्टनरशिप रहा है वो आई थिंक बड़ा क्रूशल था।
तो रोहित शर्मा ने कहा कि अजिंक्य रहाणे के साथ उनकी साझेदारी टर्निंग पॉइंट रही। उधर दिल्ली हाफ मैराथन में आज पुरुष वर्ग में इथोपिया के एनबिलाक पेलिहू और महिला वर्ग में सिह गेमचू विजेता बनी, जबकि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का फाइनल चीन ताइपे की 4थी वरीयता हासिल ताइजो यंग ने अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने 3री वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-17, 21-14 से मात दी।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते पुनः मुख्य समाचार मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में दोनों ओर से कम 10 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग में पुलिस की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भले ही यूरोपीय संघ को पत्र लिखकर ब्रेग्जिट टालने की अपील की है, मगर सरकार 31 अक्टूबर तक यूरोपीय संघ छोड़ना चाहती है। स्विट्जरलैंड में इस समय संसदीय चुनावों के लिए डाले गए मतों की गिनती हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार दक्षिणपंथी स्विस पीपल्स पार्टी का प्रभुत्व कमजोर पड़ सकता है। तुर्की ने कहा है कि सीरिया के सरहदी इलाके में कुर्द लड़ाकों के हमले में उसके एक सैनिक की मौत हुई है, जबकि एक अन्य जख्मी हुआ है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि।